जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद और आगे भी एक श्लोक बोलेंगे अजानो लंबिता भुजौ अजानो लंबिता भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलाय तक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। इसका अर्थ ऐसा है कि हम सब संकीर्तन आंदोलन के पिता श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी भुजाएं उनके घुटनों तक लंबी हैं। उसका नाम है अजानु बाहु या अजानु लंबितौ भुजौ। ये भगवान का चिन्ह होता है। जब भगवान का अवतार या भगवान स्वयं आते हैं तो उनकी भुजाएं जो हैं यहाँ से लेके घुटने तक पहुँचती हैं। आपकी पहुँचती है देखो जरा, नहीं पहुँचती, बीच में ही रुक जाती है। तो ये भगवान के अवतार का लक्षण है। तो वो परम भगवान और उनके अवतार नित्यानंद प्रभु जिनकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं, जिनका रंग स्वर्ण जैसा चमकदार है, जिनकी आंखें कमल जैसी हैं, जो विश्व के रखवाले हैं, हाँ, विश्वम भरव और युग धर्म के रक्षक हैं, युग धर्म पालव द्विजवरव यानी कि जो ब्राह्मणों के पालक हैं, जो इस विश्व के सभी जनता को आनंद प्राप्त करा देते हैं। और वो लोग दोनों यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो बहुत कृपालु है। और जगत प्रिय करो यानी कि जब सब जीवों के लिए जो प्रिय है वो संपन्न करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। हाँ, अजान उलंबितौ भुजौ करुण कनका वदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलाय तक्षौ यानी कि कमल दल के जन नेत्र हैं विश्वम भरौ द्विज भरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। इस तरह से श्री गौरांग महाप्रभु का लीला का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। आज 27 जनवरी है। पिछली बार हमने उनके जन्म के बारे में चर्चा की थी, उनके जातक निर्माण मतलब कुंडली बनाने का भी लीला का वर्णन किया था। इसके आगे लीला बढ़ती है। महाप्रभु चैतन्य का जन्म जो है बहुत ही हम सब के लिए बहुत बड़ी कृपा का एक लक्षण है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 999 चार युग हरे कृष्णा, 999 बार जब कलयुग आगे बढ़ते हैं और 1000वां जब कलयुग आता है चतुर्युग के चक्र में, उसको कल्प कहते हैं, उसमें एक बार कृष्ण भगवान आते हैं उस द्वापर में, 1000वें द्वापर में, और उसके बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसलिए उनका अवतार जो है बहुत दुर्लभ है। और इनका अवतार दुर्लभ होने के साथ साथ अति 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 कृपा से पूर्ण है, करुणा से पूर्ण है, क्योंकि सत्ययुग में हम सब लोग ध्यान करते हैं। आपने सुना है विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, हाँ, बड़े बड़े अगस्त्य मुनि, इन्होंने सब ने केवल कुछ हज़ार नहीं, 60,000, ब्रह्मा जी ने 120,000 साल तपस्या किया था राधा रानी के चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए। सत्ययुग की शुरुआत में 60,000 अंतिम छाटगा। इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने भी ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया था, हजारों साल तपस्या ध्यान करते हुए। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तप किया फिर भी वो गिर गए। तो ध्यान ये सत्ययुग की पद्धति है भगवान प्राप्त करने की। फिर त्रेतायुग में यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, गोमेध यज्ञ करते हैं, फिर राजसूय यज्ञ करते हैं, और कई ऐसे पुत्र कामिष्टि ऐसे अनंत हजारों लोग यज्ञों का वर्णन किया गया है, जिसमें ऐसे ऐसे ब्राह्मण चाहिए जो एक मंत्र बोलेंगे तो तुरंत अग्नि उत्पन्न होगा। हाँ, ना माचिस लाइटर की जरूरत नहीं, मंत्र बोलेंगे मंत्राग्नि तुरंत यज्ञ कुंड में अग्नि उत्पन्न होगी और बुझेगी नहीं जब तक हम चाहेंगे। ऐसे ब्राह्मण हजारों टन शुद्ध गाय का घी इसमें गिरता है। इस प्रकार से अनेक योजना होती है, अनेक पुरोहित ब्राह्मण वेद पठन बहुत भव्य दिव्य व्यवस्था होती है और कई कई हजारों दिनों तक चलता है। एक यज्ञ का वर्णन दिया है 10,000 साल तक चलता रहा वो। हाँ, हमारे पास 10-15 मिनट बैठेंगे तो हमको पूरा धुएं से हमारा नाक बंद हो जाता है। फिर द्वापर में भगवान के विग्रहों की पूजा। इनमें से कोई भी युग धर्म का पालन करने के हम योग्य नहीं है, क्योंकि ना हम 10 मिनट के लिए ध्यान लगा के बैठ सकते हैं। हाँ, एक महीना एक साल तो भूल जाओ, खाना पीना न खाते हुए सोच सकते हैं आप। विश्वामित्र मुनि कहाँ बैठे हैं, बर्फ में बैठे हैं और कुछ भी नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं पी रहे हैं, ना सो रहे हैं, केवल ध्यान कर रहे हैं। उसमें मैंने बताया था पहले एक बार आपको कि पहले पर्ण भक्षण मतलब पेड़ से गिरे हुए पत्तों को खाना, फिर जल भक्षण मतलब केवल जल पीना, उसके बाद केवल वायु भक्षण केवल सांस लेना, और उसके बाद में 6 महीने में एक बार सांस लेना। इस तरह की तपस्या होती है। खाली हम लोग पुस्तक में पढ़ देंगे अच्छा रहेगा, पुस्तक में रखेंगे उसको, बहुत डिफिकल्ट है सोचने के लिए। और ना कोई ऐसा पुरोहित है कि जो मंत्र बोलेगा और मंत्राग्नि उत्पन्न करेगा। हाँ, सबके मोबाइल बंद कर लो आप कुछ समय के लिए, नो प्रॉब्लम, स्टॉप इट। तो कलयुग के जीव ऐसे हैं कि ना उनके पास योग्यता है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई मंत्र में शक्ति है, ना कोई मंत्र सिद्धि है, ना कोई तपस्या है, ना कोई यज्ञ कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे अवस्था में जब आयु कम हो चुकी है, बुद्धि कम हो चुकी है, स्मरण शक्ति कम हो चुकी है, तपस्या करने की प्रवृत्ति इच्छा भी खत्म हो चुकी है। हाँ, तपस्या करने का एकादशी का एक व्रत करते हैं तो भी कितना कष्ट होता है, देखते रहते हैं कब पारण का समय आएगा और क्या क्या खाएंगे, उसकी योजना ऑलरेडी रेडी रहती है मन में। और 7:02 से लेकर 10:56 तक उसका समय होता है, लेकिन एक भी व्यक्ति 10 बजे तक रुकता नहीं है। तो खाली समय लिखा गया उसके अंदर 10:56, 7:02 होते ही फटाफट यज्ञ का पारण होता है अपना उपवास का। ऐसी हमारी अवस्था है आज की, ना हमको शास्त्र में रुचि है, ना हमको कोई तपस्या करने में रुचि है, ना कोई त्याग करने में रुचि है, ना कोई भजन करने में रुचि है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई शक्ति है, ना कोई योग्यता है, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। ऐसे होते हुए जो सत्ययुग में ध्यान करने पर प्राप्त नहीं हो सकता है, जो द्वापर में मंदिरों की पूजा करके प्राप्त हो सकता नहीं है, जो त्रेता में अनेक विध यज्ञ करने के बाद भी नहीं प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्ति चैतन्य महाप्रभु कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से हमको देते हैं, हमारी योग्यता न होते हुए। आप समझिए, विश्वामित्र वशिष्ठ अगस्त्य जैसे मुनियों को हजारों साल तपस्या करने के बाद में भी जो प्राप्त नहीं होता है वो क्या है? श्री कृष्ण प्रेम, परम भगवान के प्रति प्रेम। चाहे उसको आप अल्लाह करके पुकार सकते हो, कृष्ण करके पुकार सकते हो, और किसी धर्म में किसी नाम से पुकार सकते हो, उसके प्रति जो प्रेम है, भक्ति और प्रेम, कोई ज्ञान और तपस्या और योग सिद्धि की बात नहीं कर रहे हम लोग, उसके परे जो उनका प्रति प्रेम है, भक्ति है, वो प्राप्ति सत्ययुग में हजारों साल तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त होती है। हजारों दिनों के यज्ञ करने के बाद भी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता, मुक्ति मिल सकती है। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं का जन्म ले सकते हैं, ये सब मिल सकता है, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। द्वापर में मंदिरों की पूजा करने पर नहीं मिलेगा, हजारों यज्ञ करने पर नहीं मिलेगा, साधन भी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम कोई भी योग्यता न होते हुए कलयुग में अगर हम हरिनाम का आश्रय लेते हैं तो वो सहजता से प्राप्त होता है। पात्रे अपात्रे ना देखिला ना देखिला स्थाने अस्थान, ये श्लोक को हम हर कथा में दोहराएंगे, क्योंकि इसका महत्व क्या है कि कोई व्यक्ति पात्र है कि नहीं है उसको भी भगवान ने देखा नहीं, जिस स्थान पर कृपा करने जा रहे हैं उस स्थान को भी दिखाने के योग्य है कि भाई किस स्वच्छ जगह है, उपवन है, बगीचा है, पहाड़ का चोटी है या नदी किनारा है कि सागर किनारा है कि ऐसी जगह पर नहीं है, जो सत्वगुणी जगह होती है ना, जहाँ पर हमेशा सत्संग होता है या कोई अनुष्ठान होता है, कोई पूजा पाठ होता है, ऐसे कोई जगह भी देखते नहीं है। गटर के पास में खड़े रहेंगे और हरिनाम करेंगे तो गटर का पास की जगह जो है वो वैकुंठ बन जाती है, तीन गुणों के परे हो जाती है वो जगह, वो जन्म मृत्यु के प्रभाव से मुक्त हो जाती है, काल के प्रभाव से भी मुक्त हो जाती है। ऐसा हरिनाम की अंदर शक्ति है और वो हरिनाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको कलयुग में दिया है, इसलिए उनका आना जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और करुणा संपन्न करने वाला है। नाम तो भगवान का चारों युगों में है, ऐसा नहीं कि नाम नहीं है, नाम जप भी होता है चारों युगों में, लेकिन नाम जप की जो लाभ की प्राप्ति जो है होती है जिस हद तक और जिस प्रकार से और जिस क्वालिटी में होती है वो केवल कलयुग में उपलब्ध है। इसलिए सारे देवी देवता जो है, करोड़ों देवी देवता लाइन लगा के खड़े रहते हैं कलयुग में किसी ब्राह्मण या वैष्णव के घर में जन्म लेने के लिए, और हम सब यहाँ पर बैठकर प्रयत्न करते रहते हैं कि देवता का जन्म ले ले। यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान पूजा सत्यनारायण की पूजा और धाम की यात्रा और क्या क्या दान धर्म करते हैं, कुछ कुछ उपवास, कुछ शुक्रवार सोमवार मंगलवार, इसको लाल फूल, उसको पीला फूल, उसको हरा फूल, हाँ सब प्रकार का अलग अलग प्रकार के जो हजारों विधि यहाँ पर उपलब्ध है, क्यों करते हैं? अच्छा पुण्य इकट्ठा करेंगे तो फिर स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाएंगे बड़ा आनंद लेंगे, सोमरस पियेंगे, नंदनवन में घूमेंगे, अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, अप्सराओं के साथ में आनंद लेंगे, विहार करेंगे, हाँ सारे हमारे मन में यहाँ पर योजनाएं बनाते रहते हैं हम लोग, वो शुक्रवार को जाके इस पेड़ को घूमेंगे, शनिवार को उस पेड़ को घूमेंगे, फिर एक आधा परिक्रमा ऐसे करेंगे, आधी वैसे करेंगे, कितने सारे लोगों के ग्रंथ में कितना कितना कुछ लिखा हुआ है। क्या क्यों करने के लिए? स्वर्गवास प्राप्त हो। लेकिन स्वर्ग के लोग क्या कर रहे हैं? जो स्वर्ग में जा चुके हैं, यहाँ से स्वर्ग में पहुँच चुके हैं, वहाँ पर हजारों साल का जीवन भी जी रहे हैं, वहाँ का भी आनंद ले रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, सो रहे हैं, आराम से शरीर का भोग ले रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इतना सारा भोग प्राप्त करने पर भी हृदय को समाधान प्राप्त नहीं होता है। सोमरस प्राप्त करने पर, शरीर का अप्सराओं के साथ भोग लेने पर भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि आत्मा का खुराक वो नहीं है, आत्मा का खुराक जो है भगवान का प्रेम है, भगवान का प्रेम और भक्ति ये आत्मा की खुराक है। जैसे कि मछली को आप सोने के पात्र में सुगंधित जल में रखेंगे रत्नों के साथ में तो मछली भी तड़प तड़प के मर जाएगी, अरे आप बोलेंगे इतना खर्चा किया उसके लिए, हाँ जल से भी हजारों गुना अधिक खर्च करके रखा उसको, लेकिन मछली तड़प तड़प के क्यों मर रही है? क्योंकि मछली का खाना वो नहीं है, मछली का खाना नदी और समुद्र का जो नेचुरल वाटर है वो है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार बहुत श्रेष्ठ है, वो चाहते हैं कि हजारों लाखों साल का जन्म जो है उसके बजाय 70-80 साल का जीवन अगर कलयुग में प्राप्त करते हैं तो उस छोटे से कालावधि में भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और अगर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं भी आते हैं, क्योंकि 999 कलयुग तो नहीं आते वो, फिर भी उनके द्वारा स्थापित जो हरिनाम संकीर्तन है उसमें वो शक्ति है कि उस न आने वाले, उनके न आने वाले कलयुग में भी उनको उस नाम से भगवान की प्रीति प्राप्त हो सकती है। इसलिए साधु लोग कलयुग के अंदर अनंत दोष देखते हुए भी उसकी पूजा करते हैं। आप सब सोचिए इस बात को, जिस कलयुग के अंदर इतने सारे अवगुण हैं जो हमने आपको बताए, ना ज्ञान है, ना श्रद्धा है, ना इच्छा है, ना कोई तपस्या की प्रवृत्ति है, ना गुण है, ना झगड़ालू प्रवृत्ति है, सब कुछ अस्थिरता अशांति सब कुछ भरा हुआ है, भय भरा हुआ है, चिंता है, सब कुछ है इधर, फिर भी साधु लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि कलयुग में वो वस्तु उपलब्ध है जो अन्य किसी अच्छे अच्छे युगों में उपलब्ध नहीं है। जैसे गटर में भी अगर आपको चमकता हुआ हीरा मिले तो आप जाएंगे ग्लोव वोज पहन के, नाक में सब बंद करके जाएंगे और हीरो को निकालेंगे और साफ करके अपने में स्नान करेंगे और हीरा लेकर घर जाएंगे, करते कि ना ऐसे लोग? हाँ, क्योंकि मूल्यवान वस्तु कहीं पर भी मिले उसको स्वीकार करना चाहिए, ये शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है वो हमारे लिए अति 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 दयालु और कृपालु, हमारे कल्याण के लिए है, क्योंकि अन्य कलयुग में जहाँ पर हरिनाम है और ये कलयुग जहाँ चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं, इसका थोड़ा फर्क है, ये है कि जब महाप्रभु जी आते हैं तो अपने मुख से उस हरिनाम को सबको बांटते हैं। अन्य युगों में कोई देवता कोई अवतारा कैसे बांटता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे 1000वें कलयुग में आकर स्वयं अपने मुख से इस दिव्य मंत्र को उच्चारण करते हैं, और जैसे ही उच्चारण करते हैं, उन्होंने किया है वैसे वैसे उनकी आंखों के सामने लोग आनंद विभोर होकर बेहोश हुआ करते थे, उनकी आंखों से अश्रु की नदी बहा करती थी आनंद की। तो वे चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु के अंदर कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भगवान भी अवतारी हैं, मतलब उनके उनके तरफ से अवतार उत्पन्न होते हैं, उनको अवतारी कहते हैं, वो अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारों को जन्म देते हैं। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, राधा और कृष्ण एकत्र होकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण, कष्ट होता है तो खड़े हो जाइए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कथा के समय सोना मत। तो पिछली बार जन्म का वर्णन किया था हमने, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है उस समय से, यानी कि उसके पहले से भी जब वो गर्भ में थे तब भी सची माता अनुभव किया करती थी कि सारे देवता कुछ अपने मूल भेष में या कुछ रूप बदल कर सब सब देवता जो है लाइन से अपनी पत्नियों को लेकर सभी लोगों से आ रहे हैं और उनको प्रदक्षिणा कर रहे हैं। उनको आश्चर्य हो रहा है क्योंकि वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, वो है तो नंद महाराज के अवतार यशोदा के अवतार थे वो स्वयं, लेकिन इस लीला में एक गरीब ब्राह्मण का रोल अदा कर रहे हैं, तो देवता उनको प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है अरे ये लगता है मेरे गर्भ में कोई विशेष व्यक्ति है। उनको पता नहीं कि स्वयं भगवान उनके गोद में है, लेकिन उनका कोई कोई बड़े सिद्ध पुरुष होगा, कोई कोई महापुरुष होगा, कोई देवता होगा। हमारे सारे देवता आके प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और साथ साथ प्रदक्षिणा करते करते सची माता का भी दंडवत कर रहे हैं, उनको चरणों को छू रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद ले रहे हैं कि जिनके गर्भ में गर्भाशय में स्वयं भगवान ने आश्रय लिया है वो कितनी महान होगी, कितनी महान भक्त होंगी वो भगवान की। ये सोचकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों के चरण स्पर्श करके जा रहे हैं। तो जन्म के बाद में भी सिलसिला रुका नहीं। हाँ, अभी 30 तारीख को आएगा ना गणेश चतुर्थी, गणेश जन्म दिवस आएगा, विनायक की चतुर्थी आएगा, 2 दिन से पहले लाइन चलती रहेगी ना, और वो लाइन 3 दिन 4 दिन चलती रहेगी। उसी तरह से भगवान का जन्म हुआ उसके बाद भी अनंत समय तक देवी देवता आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे। जैसे कोई बोलेगा कि कोई महान संत पुरुष जो है बंबई में आ रहे हैं, तो कई दिनों से लोग आने लगते हैं उनके पीछे आने लगते हैं, कई दिन तक मेला चलते रहता है। जब गुरु पूर्णिमा होती है तो कई सारे भक्त जो है अपने गुरु जी को मिलने जाते हैं, और कई दिन तक वो सिलसिला चलते रहता है। जैसे हमारी पूना यात्रा हुई, हाँ 4 दिन तक लगातार सब भक्त लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब जगह पूना में एक ही दृश्य है, कोई भी रोड पे जाओ धोती कुर्ता पहन के भक्त लोग आगे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि कोई महान घटना हो रही है। उस तरह से चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने के पश्चात रोज के रोज देवी देवता आते थे, कुछ छुप छुप कर आते थे, कुछ ब्राह्मण बनकर आते थे, कुछ अदृश्य होकर आते थे, लेकिन उनकी छाया जो गिरती थी उस समय लंबी लंबी छाया गिरती थी, गोल्डन सुनहरे रंग की छाया गिरती थी। हमारी छाया काले रंग की होती है, हाँ देवताओं की छाया सुनहरे रंग की होती है। तो जब वो छाया आगे पीछे हिलती थी तो लोग सोचते थे कि अरे कोई चोर आ रहा है, हाँ और भाग रहा है, ऐसा लगता था उनको। क्योंकि बेचारे गाँव के सिंपल हार्टेड भक्त हैं, तो सब सखियाँ हैं सची माता की, जगन्नाथ मिश्रा के कोई मित्र हैं, सब सोच रहे हैं अरे कोई चोर आके गया होगा, तो वो छाया के पीछे भागते थे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता था हमको। तो इस तरह से निमाई चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने के पश्चात उनका जो मुख कमल था, हजारों सूर्यों की आभा उनके चेहरे पर थी, और हजारों सूर्य की तुलना करना भी एक मूर्खता की बात है। हा? जैसे आम की मिठाई की तुलना हम चीकू के साथ तुलना करेंगे तो मीठा तो दोनों है, लेकिन आम का मिठास में वो तुलना करने से कुछ है नहीं। आप बोलेंगे 4 आम 4 चीकू का एक टेस्ट एक आम की तरह होता है क्या, ऐसा बोलेंगे तो आप बोलेंगे ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, वो आम का अलग होता है। उसमें भी हापुस आम का कुछ अलग ही होता है, और ऐसा बोलेंगे ना आप लोग। कुछ कुछ वस्तु हम लोग तुलना नहीं कर सकते, खाली समझ सकते हैं कि ये बहुत, जैसे कि कोई बोलेगा कि कुएं का पानी और समुद्र का पानी में कितना अंतर है, तो मेंढक बोलेगा कि 4 कुएं का हो सकता है, 4 कुआं मिलके एक सागर बन सकता है, तो बोला ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 कुआं होएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, 15 कुआं 50 कुआं नहीं नहीं नहीं, 100 कुआं अरे नहीं बाबा नहीं हो सकता है तुलना उसका, ऐसा आप बोलेंगे ना। फिर बोलेगा कि 100 कुआं का पानी में कितना हो सकता है, ये मेरे दिमाग में फिट नहीं हो रहा है बात ये, तो अब मैं उस बात को छोड़ देता हूँ कि मेरे दिमाग के बाहर है। उसी तरह से भगवान का जो सौंदर्य है
उनके एक हर एक श्री अंग का जो सौंदर्य है उसको तुलना नहीं कर सकता है। तो उस मधुर प्रेम से भरे हुए तेज पुंज चेहरे को देखकर उनकी माता और पिता के आनंद में फूले नहीं समा सकते थे। ऐसे लिखा है कि वो रोज हर क्षण आनंद के सागर में डूबते रहते थे, उनके चेहरे का दर्शन करते करते। सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा बार 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 केवल उनके चेहरे को देखते रहते थे, ऐसे ताकते थे बिना पलक छपके हुए। फिर सखियाँ आती थी पड़ोस से, वो भी वही करती थी, देखते रहती थी बालक को, एक टाक देखते रहते थे। फिर उनके भाई जो थे, उनका नाम था विश्वरूप, वो भी बार बार आकर चैतन्य महाप्रभु के बाल स्वरूप को देखकर गले लगाते थे, क्योंकि भाई थे ना उनको, उनको आलिंगन देते थे। फिर नीलाम्बर, फिर जगन्नाथ मिश्र आते थे, फिर सखियाँ आती थी। तो हर समय ऐसा वर्णन आता है कि हर समय किसी भी समय दिन के उनके घर में बहुत भीड़ हुआ करती थी। और कुछ लोग देवता लोग जो थे ब्राह्मण रूप के रूप में आते थे और उन पर मजाक किया करते थे, यहाँ पर क्या मेला लगा हुआ है क्या, रोज यहाँ पर इतने लोग क्यों जमा हैं, किसी भी समय जाओ, हमेशा लोग चैतन्य महाप्रभु के बाल स्वरूप के चारों ओर खड़े हैं, पीछे पीछे कर रहे हैं, आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, फिर आगे कर रहे हैं, फिर नए लोग आने का प्रयास कर रहे हैं, पीछे लोग हट रहे हैं, फिर नए जा रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा कॉन्स्टेंटली उस घर में भीड़ हुआ करती थी। फिर उनको भेंट दे रहे हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु के पास में कोई दक्षिणा रख रहे हैं, फिर जगन्नाथ मिश्रा को दक्षिणा दे रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, ये पूरा दिन कार्यक्रम हुआ करता था उनके पास में। फिर कुछ लोग आते थे सखी सखियाँ, और ऐसा होता है ना कि बालक देखते हैं हम लोग ना, हमारे अंदर अपने आप ही प्रेम जागृत होता है। फिर हम लोग उसके लिए कोई मंत्र बोलेंगे, कोई आशीर्वाद देंगे, बोलेंगे जुग जुग जियो, हाँ अपना आपकी आयु लंबी हो, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो सब लोग आशीर्वाद देते, कुछ लोग आके विष्णु रक्षा मंत्र, देवी रक्षा मंत्र, नरसिम्हा स्तोत्र और अपराजित स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे मृत्युंजय मंत्र है, वैसे एक स्तोत्र है अपराजित स्तोत्र, उससे हम किसी जीवन में किसी कार्य में अपराजित पराभव प्राप्त नहीं करेंगे, हमेशा विजय यशस्वी रहेंगे। इस प्रकार के अलग अलग शोक स्तोत्र आके बोलते थे, कोई नरसिंह का नाम बोल रहा है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहा है, कोई देवी स्तोत्र रक्षा के लिए, बालक की रक्षा के लिए बोल रहा है। और एक बात महाप्रभु जी के जीवन में बहुत विशेष लक्षणीय है, मैंने आपको बताया था जब जन्म हुआ तो क्या हुआ था, चंद्र ग्रहण था, कल भी चंद्र ग्रहण था ना, उस समय सारे लोग जितने नास्तिक आस्तिक, भगवान के विरुद्ध, भगवान के द्रोही द्वेषी, भगवान के भक्त ब्राह्मण, सब लोग एकत्र होकर क्या कर रहे हैं, हरि हरि का गुणगान कर रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं। जन्म पे ही उन्हें बता दिया था कि मेरा उद्देश्य है अवतार लेने का, मेरा अवतार का उद्देश्य है कि सब लोगों को हरिनाम बांटना, ये न कह रहे प्रकार है सब लोगों के मुख से हरिनाम का उच्चारण कराना, ये मेरे अवतार का उद्देश्य है। तो क्या करते थे, बालक रूप में रोते थे बार बार, लोग इकट्ठा हो गए फिर रोते थे, फिर लोग रोते थे, लोग रोने लगेंगे तुरंत हरि 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 बोलते थे, फिर रोना बंद करते थे, हंसते थे, फिर थोड़ा हंसने लगे तो हरिनाम बंद हो गया, फिर रोते थे, फिर वो हरी हरी बोलते सब लोग, भाई हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, कोई अलग ट्यून में बोल रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं, हरी का नाम होना चाहिए उसके अंदर, तो तुरंत रुकते थे। तो दिन भर उनके घर में मैंने कहा एक तो भीड़ हुआ करती थी और दिन भर हरिनाम का कीर्तन हुआ करता था। बालक भी बहुत चतुर थे, तुरंत रुक गए तुरंत चालू, जैसे हमारी बेटी जो है ना उसको प्रेम में अपना चलाने का रोक दिया वो तुरंत कुछ ना कुछ करने लगती है, चलाते रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली। वैसे चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ उसके बाद में रोज का ये था, जरा सा कुछ हुआ तो रोते थे, तुरंत हरी हरी करते थे, सब हरी नाम का गुंज जो है उनके घर में 24 घंटा चलते रहते थे। और वो वेट करते थे कभी सुबह उठेंगे तो कभी जाएंगे उनके पास, फिर कभी रोएंगे तो हम फिर दोबारा ताली बजाएंगे, मृदंग बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, करताल बजाएंगे और हरी नाम का कीर्तन करेंगे। इस तरह से महाप्रभु जी ने सतत लोगों को हरी नाम के कीर्तन में मग्न रखा, कितनी भाग्य की बात है। देखो स्वयं भगवान आए हुए हैं और युग धर्म को अपने मुख से बांट रहे हैं, उनके सानिध्य में, उनके श्री अंग के सानिध्य के बीच में रहकर लोग हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं और उनके अंदर जब करते हुए उनको कोई क्या कहते हैं इनडिस्क्राइबेबल मतलब अवर्णनीय आनंद का अनुभव क्या करते थे वो, कि ऐसा नाम तो हमने पहले भी जप किया लेकिन इस समय महाप्रभु के जन्म होने के बाद में जब हम ये गायन कर रहे हैं तो उस पर कुछ अवर्णनीय आनंद हो रहा है, वो कैसा उसको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आनंद का अनुभव हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे। ऐसे ही जन्म होने के बाद में एक महीना होता है, आप सब जानते हैं ना, हमारे मेडिकल में भी लिखा है 40 डेज आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड माता जो है वो घर से बाहर नहीं निकलती, 40 दिन का समय दिया गया है। पुराने जमाने में अभी तो क्या है, लेडीज टुडे डिलीवर टुमारो दे गो टू वर्क, ऐसा भी होता है। लेकिन पुराने जमाने में माता जन्म लेने के पश्चात 40 दिन एक कमरे में रहा करती थी, बाहर कभी निकलती नहीं थी, और 40 दिन में अंधेरा भी रखते थे घर के अंदर, क्योंकि बालक जो है गर्भ के अंदर अंधेरे में रहा हुआ है 9 महीने तक। अचानक आप उसको एकदम एक्सपोज करेंगे ठंडी हवा में, तो 37 टेम्परेचर के अंदर अंदर रहा है, और अभी तो 23 है 24 है, ठंड लगेगी बालक को। आप कभी भी देखिए, आप नर्स लोगों ने देखा होगा, बालक जन्म लेता है तो ऐसे ऐसे होता है कि नहीं, क्योंकि 37 से सिर्फ तुरंत 30 और 29-28 में आ गया तो फिर ठंड लगेगी उसको, उसको रैप करते हैं बालक को, और ज़्यादा शोर नहीं करते उसके आसपास, और ज़्यादा लाइट भी रखते नहीं, एकदम बच्चा एकदम ऐसे ऐसे करने लगता है। हम फ्लैश निकालते तो कैसे करता है एकदम ऐसे, लाइट सहन नहीं होती है। और माता और बालक के संगोपन के लिए वो 40 दिन का विधि बताया गया है, उसमें केवल दाई और कोई माताएं जाती हैं, हर माता भी अंदर प्रवेश नहीं करती। तो वैसा 1 महीना पूरा हुआ तो सच्ची माता ने बड़े आनंद से अपनी सखियों को लेकर, वो मतलब उतना सुंदर विधि हुआ करते थे पहले, कि जब वो माता पहली बार घर के बाहर निकलेगी तो वो नदी में स्नान करेगी और साथ में वाजंत्र जाएंगे, ढोलक मृदंग करताल गाते हुए लोग जाएंगे, और सखियाँ उनको साथ में लेके पकड़ के लेके जाएंगी सुंदर श्रृंगार करते हुए, फिर जाके गीत गाते हुए वो माता नदी में स्नान करेगी, नदी में स्नान करेगी और फिर मंदिर में जाएगी और पूजा करेगी। तो सच्ची माता ने अपनी सखियों को लेकर वाद्य वृंद बजाते हुए सब गंगा किनारे गए, उनका घर जो गंगा किनारे में था लेकिन घाट पर गए, वहाँ पर क्या गए, सच्ची माता ने बड़े ही प्रेम से आनंद से सखियों के साथ में नदी में स्नान किया, और उसके बाद में उन्होंने गंगा देवी की पूजा की, देवताओं की, देवी देवताओं की पूजा की। और वहाँ पर अभी भी आप जाएंगे मायापुर में नवद्वीप धाम में तो षष्ठी देवी का मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ पर सच्ची माता गई हुई हैं, उन्होंने वहाँ पर प्रणाम किया है, वंदन किया और पूजा भी किया है षष्ठी देवी का। और षष्ठी देवी की बात पूजा करने के बाद में बस फिर वाद्य वृद्ध बजाते हुए सच्ची माता घर पर आती है और सब सखियों के घर में आके दान देती है। क्या क्या देती है, कुरमुरा, जिसको क्या कहते हैं उधर मूढ़ी, मूढ़ी कहते हैं उसको, बहुत फेमस है यहाँ का कुरमुरा, वहाँ के मूढ़ी बोलते हैं, तो मूढ़ी देते हैं उनको, सिंदूर देते हैं सौभाग्यवतियों को लगाने के लिए, और तेल देते हैं और 5 सुपारी करके दक्षिणा देकर सबको संतुष्ट करते हुए सच्ची माता अपने सखियों को घर भेज देती है। उसके बाद में ये घटना विधि होने के बाद में कुछ और दिन गुजरते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़े कहते हैं ना बैठने लगते हैं, रेंगने लगते हैं। अभी एक्चुअली स्पीकिंग 4 महीने की अवस्था का वर्णन किया गया है, लेकिन 4 महीने की अवस्था में कोई बालक रेंगता नहीं है, कोई बैठता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है, 6 महीने के बाद में सब होता है चालू उसका, है ना। तो वो बालक सोने अवस्था में रहता था हमेशा, लेकिन जब कोई रहता नहीं था तो बालक उठ के चल के जाके घी का डब्बा उल्टा करना, चावल को फेंक देना, दीवार पर फेंक देना, हर वस्तु को इधर चावल दाल और तेल और घी सब फैला देना, और कुछ ही आने की आवाज़ हो गई तो तुरंत जाके वैसे 4 महीने के बालक के ले जाए। तो अरे 4 महीने का बालक अकेला है, शायद कोई चोर आया होगा रूम के अंदर, शायद कोई चोर आया होगा और उसने इस बालक को कुछ करने का प्रयास किया होगा, लेकिन हमने इतने अच्छे अच्छे मंत्र जप किए हुए हैं, इतना अच्छा अच्छा रक्षा मंत्र जपे हुए हैं, तो उस बालक को कुछ नहीं कर पाया होगा। फिर एकदम फ्रस्ट्रेट होकर उसने ये सब घी का पात्र और चावल का पात्र सब फेंक दिया होगा, है ना। होता ना कभी कोई चोर कभी चोरी नहीं कर पाता है तो और कुछ करके जाता है। कृष्ण भगवान भी ऐसे ही क्या करते थे, आपको याद है कृष्ण भगवान क्या करते थे, क्या करते थे बताओ, किसी को याद है? जब उनको माखन नहीं मिलता था किसी घर में, बहुत ऊंचा रखा है या दिखाई नहीं पड़ रहा है या ले नहीं पा रहे उसको, तो क्या करते थे? हाँ। वो उन घर में जाके पेशाब करते थे सब जगह पे, और जो बालक उनके सोए हुए हैं उनके कान में पानी डालते थे और उसको चिमटा निकालते थे, तो बालक जोर से रोता था तो माँ भाग भाग के आती थी, ऐसे करते थे, मतलब उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो और कुछ करते थे, ऐसे इरिटेटिंग बात है। उस तरह से ये सोच रहे हैं कि वो चोर जो है उसको बालक को छीनने में या कुछ कष्ट देने में सफलता नहीं प्राप्त होगी, इसलिए वो ऐसा कुछ कर रहा है। फिर जाके वो कुछ विष्णु रक्षा मंत्र, देवी रक्षा मंत्र फिर जपते थे उसको, फिर कभी कभी गाय को लेके आते थे और गाय की पूंछ सब जगह लगाते थे, फिर गंगा जल नदी से लेकर अगर विष्णु को भगवान को स्नान कराकर उसका चरणामृत जो है उसके शरीर पर सींचते थे, ये सोचकर कि उनको कोई बाधा ना होनी चाहिए, कोई संकट नहीं आना चाहिए। तो और फिर वो क्या करते थे, खुद ये करते थे, फिर जाके लेटते थे 4 महीने के बालक की तरह, सब लोग आते थे चिंता करते थे, फिर रोने लगते थे, फिर रोएंगे तो वापस हरिनाम चालू, तो हरिनाम चालू फिर हास्य, फिर हरिनाम बंद तो फिर रोना, फिर हरिनाम कीर्तन, इस तरह से हर समय लीला किया करते थे। तो ये सब देखकर वो जगन्नाथ मिश्रा को पूछते थे, अरे ये क्या हो रहा है, पता नहीं इतना छोटा सा बालक लेटा हुआ है और सब ये फैलता जा रहा है सामान, रोज देख रहे हैं हम लोग, आज घी फैला रहा है, कोई तेल फैल रहा है, कोई चावल फैला हुआ है, कोई दीवार पे सब निशान गिरे हुए हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो सचिव जगन्नाथ मिश्रा बड़े गंभीर हुआ करते थे, हाथ जोड़ते बोलते, विधाता ये आपके ही हाथ में है, मैं जानता हूँ आप नियंत्रण में हैं, आपकी कृपा दृष्टि मेरे बालक पर है, इसलिए कृपा करके आप बालक की रक्षा कीजिए। हाँ, क्योंकि भगवान अपने निकट के भक्तों को हमेशा माया में रखते हैं। वो कौन सी माया है? महामाया नहीं, योग माया। योग माया में भी लोग जानते नहीं कि भगवान कौन है, नहीं हमारा बालक है, हमको डांटना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। हाँ, ये खाएगा तो बीमार पड़ेगा, वो खाएगा तो रोग हो जाएगा उसको, इसलिए वो डांटते थे भगवान को। अभी अगर आपको जानकारी है कि हाँ ये भगवान है तो आप डांटेंगे नहीं। सुधा मैया को जब मालूम पड़ा, मुँह खोला उन्होंने, तो उनको ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, तो तुरंत जानकारी हो रही, तो मेरा बालक नहीं है, तो परम भगवान है, ये अखिल ब्रह्मांड नायक नियंता सृष्टि निर्माण करता परम भगवान है। वो तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी वो, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रार्थना करेगी तो डांटेगी, कभी मक्खन कैसे खिलाएगी, स्तनपान कैसे कराएगी, बोले भगवान है तो क्या स्तनपान कराएगी उनको आप, ओम सहस्त्र वीर्या सहस्त्र पाद करके श्लोक बोलेंगे उनके लिए। तो ये जो प्रेम का रस है उसको अनुभव करने के लिए भगवान हमेशा अपने निकट के भक्तों को माया में रखते हैं, वो ज्ञान देते नहीं है कि ये भगवान है। तो उस दिव्य अज्ञान, हाँ दिव्य अज्ञान मतलब क्या है, ये दिव्य भी है और अज्ञान भी है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये ऐसा यहाँ पर है। कैसे? कि भगवान ने उनको दिव्य रूप में अज्ञान में रखा है, जानकारी देते नहीं कि ये भगवान है, मैं परम पुरुषोत्तम हूँ, ये बताते नहीं उनको। तो फिर वो क्या करते हैं, नारायण को पुकारते हैं। नंद भगवान क्या, नंद महाराज क्या करते थे, अपने रूम के अंदर नारायण की मूर्ति थी उनके पास, अधोक्षज विष्णु, ये जगन्नाथ मिश्रा अधोक्षज विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु का एक स्वरूप है, तुरंत जाके प्रार्थना करते थे, उनके चरणों की तुलसी आके लगाते थे, उनका चरणामृत उनके सर पर लगाते थे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण भगवान स्वयं अनंत विष्णु के उगम हैं, उन्हीं के द्वारा ऐसे विष्णु निर्माण होते हैं अधोक्षज विष्णु जैसे, लेकिन उनके द्वारा वो पूजित होते हैं, स्वयं उनकी कृपा को लेते हैं। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा फिर विधाता के रूप में नारायण को पुकारते थे और उनको प्रार्थना करते थे कि मेरी बीच बालक की रक्षा करो। उसके बाद में कई महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में एक्चुअली, उसके बाद में नामकरण का समय आता है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु की जो माता है सच्ची माता, उनके पिताजी का नाम है नीलांबर चक्रवर्ती, वो बड़े विद्वान थे, बड़े उनको शास्त्र का ज्ञान था, बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे, और साथ साथ उनको भविष्य शास्त्र जो है कुंडली शास्त्र बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो वो आते हैं साथ में ब्राह्मणों को लेके आते हैं, और साथ में बहुत सारी स्त्रियां आती हैं, ऐसा वर्णन किया गया है इस भागवत में कि वो लक्ष्मी जैसे सुंदर थी वो स्त्रियाँ, वो आभूषण पहन के वस्त्र पहन के लक्ष्मी से लग रही थी, बहुत लोग की आँखों में खड़े रहने में परेशानी हो रही है, इसलिए आप खड़े हो जाओ अगर नींद आ रही है आपको। तो वो लक्ष्मी जैसे स्त्रियों को साथ में लेकर आते हैं, ब्राह्मण को लेकर आते हैं, खुद भी आते हैं, और सब भाई जाति का वर्णन इतना सुंदर है कि वो नाम देने के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सब स्त्रियां बोल रहे हैं कि ये नाम होना चाहिए, सब पुरुष बोल रहे हैं कि यह ये नाम होना चाहिए, और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या नाम होना चाहिए, इतना सुंदर बालक है, हाँ इतनी इनका इनके आने से ही नवद्वीप में अकाल नष्ट हो गया है, सब जगह समृद्धि आ गई है, सब लोग दुखी थे पहले वो भी खुश होने लगे हैं, जहाँ जहाँ पर दुख था वहाँ पर खुशी आनंद प्रकट हो रहा है, तो ये बड़े विशेष जीव है, इनको विशेष नाम देना चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि अरे इनको अभी आगे जाकर कोई बालक नहीं होगा इनके घर में, तो उनको वैसे नाम देना चाहिए जो अनुज जैसे कि लास्ट बालक का नाम होता है। तो कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं इनके आने से सब जगह समृद्धि छा गई है तो वैसे नाम देना चाहिए, अरे पृथ्वी भी बहुत समृद्ध और खुश हो गई है, जैसे मानो नारायण ही स्वयं आए, उनको पता है कि नारायण के आने से सब जगह समृद्धि पैदा होती है, तो लगता है नारायण जैसे ही समृद्धि उत्पन्न हो रही है। तो कुछ लोग कह रहे नहीं नहीं इनका नाम विश्वंभर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि तीनों लोगों का जो पालन करने वाले भगवान स्वयं है, उन जैसे इनके इनके हॉरोस्कोप में लिखा है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब उनकी कुंडली बनाई गई ब्राह्मण के द्वारा, तो उसमें लिखा गया था कि ये पूरे विश्व का पालन करेगा, इसके होने से ही पूरे विश्व का भरण होगा, इसलिए उनका नाम विश्वंभर होना चाहिए। तो फिर सखियों ने मिलकर नाम रखा निमाई, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था, नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। हाँ, आमतौर पर जन्म कैसे होता है, योनि मार्ग से होता है। हाँ, हॉस्पिटल में देखते हैं हम, लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो आम आदमी की तरह उनका जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। देवकी के गर्भ में जरूर थे वो, लेकिन आम रास्ते से जन्म नहीं लिया उन्होंने, वो गर्भ से सीधे चतुर्भुज रूप में अलंकार सहित, वस्त्र सहित, मुकुट सहित, चार हाथ में चार अस्त्र लेकर प्रकट हुए वो। और जब भी वो उत्तरा के गर्भ में गए, आपने सुना होगा जब उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया अश्वत्थामा द्वारा, तब वो गर्भ में प्रवेश किया उन्होंने, तो उनका आकार बताया है केवल अंगूठे जैसा, मतलब मेरा अंगूठा जो है इसका ऊपर का हिस्सा जो है इतने साइज के भगवान होकर उत्तरा के गर्भ में गए। लेकिन उसका भी वर्णन किया गया है कि कैसे हजारों सूर्यों की आभा उनके शरीर से निकल रही थी, उनके पीताम्बर से कितना प्रकाश निकल रहा था, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म शोभायमान थे, उनके सर पर हीरों का मुकुट था और गले में वैजयंती माला और छाती पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह, कमल नयन जैसी आंखें उनकी, मकराकृत कुंडल पहने थे उन्होंने। सुंदर वर्णन कैसा, इतने साइज के अंदर, मतलब वो चाहे बिंदु आकार के होंगे या अंगुष्ठी के आकार के होंगे या पूरे पहाड़ के जैसे होंगे, उनका जो गौरव है हमेशा वैसे ही रहता है। तो वैसे ही भगवान जो है वो प्रकट हुए देवकी के सामने, जेल के अंदर पैदा हुए। रात के 12 बजे के अंधकार सब जगह था, वहां पर जैसे हजारों सूर्यों का दिन का प्रकाश हुए वो छा गया वहां पर, सब जगह पर सब कुछ ठीक से दिखाई पड़ने लगा। बाहर घनघोर वर्षा हो रही है अंधकार में, और जेल के अंदर पूरा प्रकाश ही प्रकाश। तो वैसे भगवान जो है बालक रूप में हो या इन्फेंट रूप में हो या बेबी रूप में हो या किसी भी रूप में हो, वो तो भगवान, तो भगवान ही रहते हैं हर समय। वो षड ऐश्वर्य पूर्ण और 64 कलाओं से पूर्ण रहते हैं, और सब जगह से धन दौलत बुद्धि प्रकाश सब प्रकार का जो ऐश्वर्य है उनके अंदर अनंत मात्रा में विराजमान होता है। तो फिर भगवान ऐसे ही द्विभुज रूप में सची माता के गर्भ से निकलते हुए नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। वहीं पर उन्होंने, मैंने आपको पहले बार कहानी बताया था, वहीं पर ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था। बालक को चुराने के पश्चात भगवान ने उनको उनका गर्भ हरण किया, उन्होंने ब्रजभूमि का आश्रय लिया, फिर वहां से उड़े और फिर यहां पर जाके बैठ के उन्होंने फिर रोते हुए तपस्या किया, और उसी जगह पर द्वापर युग में चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया था कि मैं वहां पर आऊंगा और आप भी यहां पर आएंगे, रामलीला करेंगे और इस बार आप मेरी सहायता करेंगे। उसी योगपीठ के स्थान पर चैतन्य महाप्रभु ने निमाई के पेड़, नीम के पेड़ के नीचे अवतार लिया, जन्म लिया, कि उनका नाम निमाई रखा गया। और नीलांबर चक्रवर्ती जो विद्वान थे, उन्होंने ये जानते हुए, उनकी कुंडली को देखकर जानते हुए कि तीनों लोगों की रक्षा करने वाले और पालन करने वाले हैं ये, इसलिए उनका नाम विश्वंभर रखा। तो उस प्रकार उस समय जब भी नामकरण किया गया उनका, उस समय सभी स्वर्ग लोकों में से दुंदुभी, मृदंग, ड्रम्स, तुतारी, बांसुरी, करताल, घंटाएं, सब दिव्य ध्वनि होने लगी सब जगह से। पुष्पवृष्टि हुई स्वर्ग लोकों से, सभी देवताओं ने, सभी लोगों ने और उपस्थित ब्राह्मणों ने मिलकर भागवत गीता, श्रीमद् भागवत भागवतम और वेदों के श्लोकों का उच्चारण किया, पवित्र श्लोकों का उच्चारण किया। लोगों को लग रहा था कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं, लेकिन उस धीर गंभीर आवाज में देवताओं के श्लोक पठन की आवाज़ भी सम्मिलित थी, और उनके जो दिव्य वाद्य थे वो सब एक साथ बजने लगे उनके नामकरण के समय पे। फिर जगन्नाथ मिश्रा ने और उनके पत्नी ने, एक बहुत अद्भुत विधि होता है जो आज भी लोग, कुछ लोग करते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, इतने छोटे बालक के सामने जो अभी रेंग रहा है, मतलब वो भी आगे आगे जा सकता है, उस समय उसका नामकरण करते हैं, और उसके सामने चावल रखते हैं, सोने की नाणी रखते हैं, चांदी की नाणी रखते हैं, श्रीमद् भागवत रखते हैं, वस्त्र रखते हैं, सब कुछ वस्तु रखते हैं इसे, और फिर बोलते हैं आओ बालक, जो आपको सबसे प्रिय वस्तु है उसको ले लो। तो जगन्नाथ मिश्रा ने चावल, श्रीमद् भागवत और पोहा यानी कि कुरमुरा, सोने के कॉइन्स, चांदी के कॉइन्स और ऐसे बहुत सारे वस्तु जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके सामने रखे, और उन्होंने कहा हे मेरे प्रिय बालक विश्वंभर, ध्यान से सुनो, तुरंत जाकर पकड़ लो जो तुम्हारे हृदय के सबको सबको तुम्हारे हृदय के लिए अति प्रसन्न और अति आनंददायक हो, अति प्रिय हो। तो किसी के भी कहने की परवाह न करते हुए चैतन्य महाप्रभु, बालक चैतन्य महाप्रभु, विश्वंभर निमाई ने आगे क्या क्या पकड़ा, हाँ, श्रीमद् भागवत को तुरंत लपेट लिया, अपने अपने ओर खींच लिया। और ये इस पर प्रकट किया उन्होंने इस बात से कि आगे जाकर श्रीमद् भागवत का जो सार है, जो श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है, भागवत ज्ञान बोलते हैं उसको, भागवत धर्म बोलते हैं, उसी को उन्होंने प्रचार किया जीवन भर में। हाँ, ऐसे कई संत हैं जिनके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए हैं। सनातन गोस्वामी के स्वप्न में एक ब्राह्मण ने आकर उनको श्रीमद् भागवतम दिया था स्वप्न में, और जब वे सुबह जगे तो उनको उनके बिस्तर पे वही भागवतम दिखाई पड़ा जो ब्राह्मण ने स्वप्न में दिया था। और जीवन भर सनातन गोस्वामी ने कभी भी अपने हाथ से उस भागवतम को नहीं छोड़ा, सोते उठते जागते भागवतम को साथ में लेके उन्होंने सब जगह भ्रमण किया। गदाधर पंडित का भी यही कथा है जो राधा रानी का अवतार है चैतन्य महाप्रभु लीला में, उन्होंने भी भागवतम को कहीं छोड़ा नहीं कभी भी। हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं गदाधर पंडित से भागवतम सुना करते थे, और प्रहलाद की कथा, हिरण्यकश्यप की कथा जो है, नरसिंह भगवान की लीला जो है, वो 300-300 बार सुना करते थे, एक ही कथा बार बार उनसे सुनते थे। उस रुचि से और इतने प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा गदाधर पंडित किया करते थे जगन्नाथपुरी में। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम का जो तत्व ज्ञान है, जो सिद्धांत है, उसी को लेकर चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन प्रस्तापित किया है। तो इसी छोटे से अवस्था में श्रीमद् भागवत को खींचकर अपनी ओर वो इस बात को प्रकाशित कर देते हैं कि आगे जाकर क्या होने वाला है। फिर उसके बाद में ये सब जब लोग देखते हैं तो सब लोग जय जय जय, गौरव हो, आपका बालक बड़ा पंडित होगा, ऐसा वर्णन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बालक बड़ा श्रेष्ठ वैष्णव होगा, थोड़े से ही पढ़ने से सारे शास्त्र को मुखोद्गत कर लेगा। और आगे जाकर ये सिद्ध भी होता है, छोटी सी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु जो है निमाई पंडित बन गए, छोटी सी अवस्था में, बालक अवस्था में, यहाँ तक कि केवल पंडित नहीं बने कि निमाई पंडित बनकर वो बालकों को पाठशाला में सिखाने लगे। और बड़े बड़े पंडित को आगे जाकर कथा बताएंगे आपको, दिव्य दिग्विजय काश्मीरी, क्या नाम उसका, केशव काश्मीरी पंडित था, जो चारों दिशाओं में जाकर उसने सब पंडितों को परास्त किया था, बड़े गर्व से चूर था वो, उसको बालक निमाई जो है परास्त कर देता है, उसकी कथा आपको हम आगे बताएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि आगे जाकर ये बड़ा पंडित बनेगा, और सब लोग विश्वंभर का बहुत सुंदर मुखकमल देखकर आंखों से अश्रु बहकर उनका चेहरा आनंद से भर गया। फिर वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को गोद में लिया निमाई को, और भागवतकार वृंदावन दास को वर्णन करते हैं कि देवता भी कभी सपने में भी भगवान को अपने गोद में ले सकते नहीं, ऐसा परम भाग्य उन स्त्रियों को था जिन्होंने बालक रूप भगवान के लेकर अपने गोद में रखा, गोद में उसको दुलारा और प्रेम किया उसके ऊपर। हम लोग कथा पढ़ते हैं कि गोद में लिया, फिर खाना खिलाया, फिर मक्खन खिलाया, हाँ, लेकिन कौन किसको कर रहे हैं सब कुछ? जो परम भगवान जो योगियों को तपस्वियों को हजारों साल के तपस्या करने के बाद में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, जिनके चरणों के नाखून से निकलने वाला एक किरण भी ये तपस्वी योगी ध्यानी पकड़ नहीं सकते हैं, ऐसे भगवान जो दुर्लभ से दुर्लभ हैं। हम बोलते हैं ना शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम हाँ सुरेशम, उसमें एक वर्ड आता है कि बहुत योगियों को भी ध्यान करने के पश्चात भी वो बहुत दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए, अनंत साल ध्यान करने के पश्चात भी उनका एक झांकी भी दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे परम भगवान बालक रूप में जन्म लेकर नंद महाराज के आंगन में डोलते हैं, जगन्नाथ मिश्रा के आंगन में डोलते हैं बालक रूप लेकर। माता और पिताओं जो भक्त हैं उनके, उनको माता पिता बोलने का आनंद देते हैं और खुद उनके बालक बनते हैं और नटकर शरारते करते हैं, उनसे डांट खाते हैं, उनसे इशारे पे नाचते हैं, हाँ ये सब कार्य जो करते हैं वो गोद में लेते हैं। तो देवी देवता भी लालायित रहते हैं उनके चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए। ऐसे भगवान बालक बनकर जो गंवार सखियाँ हैं गाँव की निमाई नवद्वीप धाम की, उनको गोद में लेकर दुलार रही हैं, प्रेम कर रही हैं, और देवता लोग देख रहे हैं दूर से क्योंकि उनको ये भाग्य प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो महानता है वो समझना बहुत जरूरी है। कंस को भगवान ने मार डाला, हम पढ़ते हैं अरे एक मुक्का छाते में मारा और कंस मर गया, होगा कोई साधारण राक्षस क्या है, एक मुक्का मारा मर गया। लेकिन आप गर्ग संहिता में पढ़िए कि कंस कैसा महान व्यक्ति था और कितना बलशाली था, और कितनी शक्ति हो, चक्रवर्ती दिग्विजय सम्राट था वो, ये सब पुतना अरिष्टासुर केशी इतने भयंकर भयंकर राक्षस थे, सबको उसने वश करके रखा था और भय के मारे उसका दास बनकर वो रहते थे वहां पर, उसके आदेश पर वन बाय वन मौत के मुख में प्रवेश करने के लिए वृंदावन जाते थे वो। माँ जानते थे कि हमारा मृत्यु निश्चित है, फिर भी जाते थे भय से उसके। ऐसे भयंकर राक्षस कंस को त्रिणावर्त को आकाश में फिराया उसने, ऐसे भयंकर राक्षस को जो विश्व में सबसे श्रेष्ठ राक्षस था बल में, शक्ति में, बुद्धि में, नियंत्रण में, ऐसे राक्षस को भगवान ने एक मुक्का मारा और वो खत्म हो गया। मतलब समझ सकते हैं भगवान के अंदर क्या शक्ति होगी। इसलिए पहले कंस का गौरव सुनो, फिर उसको मारने वाले कृष्ण का गौरव हम समझ सकते हैं कि क्या होंगे भगवान। इसलिए भगवान आए, जन्म लिया, रेंगे, कुछ चोरी किया, यहाँ किया, वहाँ किया, सब पढ़ेंगे आपको ठीक है लगता है, लेकिन अगर जानते हैं कि भगवान क्या चीज़ है, उनके पास क्या ऐश्वर्य है, क्या शक्ति है, और कैसे ऐसे परम भगवान आपके घर में आकर बालक बनकर रेंग रहे और खेल रहे हैं और आपको आनंद दे रहे हैं पुत्र बनने का, ये उनकी लीला है। इसलिए हम उसको लीला कहते हैं, कार्य और कोई काम नहीं कहते उसको, लीला कहते हैं। इस प्रकार से एक लीला बताएंगे आपको, बहुत सुंदर लीला है। कैसे ही कुछ दिन के बाद में जैसे ही वो खड़े होकर, मतलब ऑब्वियसली पहले छुप छुप खड़े होते ना, चार महीने के उम्र में कोई ना होते हुए खड़े रहकर तुरंत फैला के वापस लेते थे, अभी जब ऑब्वियसली और ऑफिशियली जब बड़े हो गए, खड़े होकर रेंगने लगे, तो वो जो वस्तु मिलती थी उसको पकड़ते थे, कोई भी वस्तु हो, कोई कीड़ा हो, कोई सांप हो, कोई वस्तु हो, पकड़ते थे। तो एक बार एक सांप आया उनके आंगन में ऐसे ही, तो ये भागते गए उस सांप को उसने पकड़ा। अभी आप सोचो आपके घर में छोटा बालक कोई होगा ना, किसके पास छोटे छोटे बालक हैं बताइए, यस। अगर आपके घर में सांप आता है तो क्या अवस्था होगी आपके, बताओ। आप काम पे है, आपको फोन आता है बारिश के अंदर, अरे घर में सांप आया, मेरा बालक अकेला है, सर्वेंट भी अकेली है, तो क्या होगा आपका इधर, हाँ सब बिलिंग सब रॉन्ग हो जाएगा इधर, तो भागेंगे घर के, सब लोग सामने देख रहे हैं, सबके आंखों के सामने बालक जाकर सांप को पकड़ लेता है, और सांप भी ऐसा अनोखा सांप होता है, जैसे ही महाप्रभु उसको हाथ लगाते हैं उसका गोल 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 हो जाता है, फिर ये बालक जाकर ऊपर लेट जाता है आराम से बहुत देर तक, और सबको सब लोग गोल होकर खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय 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 हाय, ये क्या हो रहा है, सांप काट लेगा, तो किसी को आगे आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आगे आएगा अगर सांप को डिस्टर्ब होगा तो शायद वो काटेगा, क्योंकि उसके ऊपर ही बालक सोया हुआ है, आराम से लेटा एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत देर तक चल रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। जैसे कालिया को जब भगवान मारने जमुना में कूदे ना, तो सब अंदर थे जमुना के पानी के अंदर, अचानक एकदम खून की धैर्य ऊपर आती है, सब लोग किनारे में रो रहे हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया, सब बड़े ग्वाल बाल, छोटे ग्वाल बाल, सब रो रहे हैं, और फिर और कुछ होता है, फिर और खून ऊपर आता है, अरे और यशोदा मैया बेहोश होकर गिर जाती है, सब सखियाँ उनको पकड़ रही हैं अंदर। फिर कुछ देर के बाद में उस कालिया के ऊपर नाचते हुए कृष्ण भगवान से ऊपर आते हैं, बहुत मधुर नृत्य करते हैं, तब देखिए उनको हाँ, फिर टेंशन में है कि अरे पता नहीं उनके मुँह सर पे पाँव दे रहे, पता नहीं उसका मुँह उल्टा करके काटेंगे तो क्या होगा, उनके मन में तो चिंता लगी हुई है। उसी प्रकार से बालक तो आराम से लेटा हुआ है सांप के गोल गोल के इसके ऊपर, सब लोग चिंता में हैं, और कुछ देर बाद में वो सांप जाने लगता है, फिर ये बालक उठता है, फिर उसके पास सांप के पीछे भागता है, फिर बालक को पकड़, फिर सांप को पकड़ता है, तो ये बालक को पकड़ लेते हैं और सांप चला जाता है, तो फिर भी ये बालक सांप के पीछे भागने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा कहा गया कि वो सांप जो था वो अनंतनाग अनंत शेष स्वयं जो भगवान के शैया बनकर उनको गर्भोदक सागर में सेवा करते हुए थी, देखा ना कितनी बड़ी शैया बनाते हैं फर्स्ट क्लास, सर के लिए सिराना है, शरीर के लिए आनंद है, लक्ष्मी के लिए जगह है बैठने की, वहाँ पर चरण दबा रही है, वही शेषनाग उनको कैसे आनंद लगेगा, हाँ उनके भगवान अवतार लेकर बालक लीला कर रहे हैं तो वो उनको देखने आए सांप बनकर, और वही आनंद दिया उनको उन्होंने जो उनको गर्भोदक सागर में देते हैं शेषनाग के शैया पर लेटने का। तो वो तो अपने भक्त के साथ में संबंध कर रहे थे, इनको लोग सांप आया काट रहे काट रहे, और सांप के आराम से निकल जाता है। फिर सब लोग आते हैं और वो वापस सब मंत्र बोलते हैं, नरसिंह का सूत्र बोलते हैं, नरसिंह का कवच बोलते हैं, गंगा जी का तो चरणामृत का जल चरण सीखते हैं, गाय का बछड़े को लाते हैं, उनका पूछ को सब जगह पर लगा के मंत्र बोलते हैं, अरे पता नहीं हमारे बालक के ऊपर कितने संकट आ रहे हैं, कभी क्या होगा समझ में नहीं आएगा, सब लोग भगवान से प्रार्थना करो, सब लोग हरी हरी, फिर बालक रोने लगता है, सब लोग हरी 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 बोलो, हरी 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 सब बोलने लगते हैं। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ये वरदान देते हैं कि ये जो सांप की जो लीला है, ये जो भी सुनेगा हाँ, पता नहीं आप में से कितने लोग जगे थे, कितने सोए थे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर वरदान दिया है कि जो लोग ध्यान से और प्रेम से इस कथा को श्रवण करते हैं वो जन्म मृत्यु रूपी सांप के दंश से बच जाएंगे। हरि ओम। श्री गौरांग महाप्रभु की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।